नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का SCO शिखर सम्मेलन में संबोधन, आतंकवाद के इकोसिस्टम और फंडिंग को ध्वस्त करने का आह्वान। जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में आज से 2 दिन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। प्रदेश में किसी भी जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन और कक्षाओं का उपयोग नहीं करने के निर्देश। और मलेशिया में संपन्न लैक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक, टीम में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र की 9 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आयोजित सम्मेलन में श्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और फंडिंग को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंडों को खारिज करने की बात कही। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है, ये किसी देश के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने SCO को लेकर भारत की सोच साझा की। उन्होंने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी अपनी 2 दिन की किर्गिस्तान यात्रा पूरी कर बिश्केक से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही में देश की GDP वृद्धि दर 7.8% रहने पर देशवासियों को बधाई दी।
देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है। विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी FIR बंद करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस अवधि के प्रदर्शन से जुड़ी कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मौजूद 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है, जिन पर पहले से ही संगीन आपराधिक मामले हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने ये आदेश दिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितम्बर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
देश में जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए आज से नई दिल्ली में दो दिन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में जल सुरक्षित भारत बनाने की दिशा में चर्चा की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और विभागों के अधिकारियों को एक मंच पर लाया गया है। उनके साथ बेहतर जल प्रबंधन के लिए कार्य प्रणालियों और चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन में जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन और जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन सहित अन्य विषयों को भी शामिल किया गया है। मंत्रालय की इस पहल से विभागीय शिखर सम्मेलन से सहकारी संघवाद और साझा जिम्मेदारी की भावना को और मजबूती मिलेगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि सम्मेलन से राजस्थान की जल सुरक्षा पर भी मंथन कर रोड मैप तैयार किया जाएगा।
जल संसाधन और हमारे जो PhD विभाग है इसको किस तरह से बेटर क्रियान्वयन के साथ हम आगे बढ़ा सके उस पर मंथन होगा। इसके अलावा हमारी जो राजस्थान की वृहत परियोजनाएं, चाहे हमारे वो ERCP हो, चाहे हमारी यमुना हो, चाहे हमारी जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे जैसे काली तीर हो, पीपलकोट हाई लेवल हो, इस तरह की जो बड़ी परियोजनाएं उसका प्रेजेंटेशन भी हम इसके अंदर देने वाले हैं। इस तरह से हर राजस्थान के अंदर वैसे भी पानी की कमी है और हमारी जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें केंद्र का सहयोग भी अपेक्षित है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे राजस्थान की जरूरतें हैं हम बेहतर तरीके से केंद्र के सामने रखने का हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 10,245 वार्डों के लिए 53,700 से अधिक प्रत्याशियों ने 65,000 से ज्यादा नाम निर्देशन पत्र भरे। सबसे अधिक 3,800 से ज्यादा पर्चे जयपुर जिले में भरे गए। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों और तीसरे मोर्चे के प्रत्याशियों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। विभिन्न स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी मुकाबलों को त्रिकोणीय बना रही है। कई जगह बागी उम्मीदवारों को मनाने की कवायद भी की जा रही है। 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निकाय चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जैसलमेर और पाली सहित विभिन्न स्थानों पर 2 दिन की ये ट्रेनिंग शुरू हुई। इस बीच नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गतिविधियों का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आज अजमेर में स्वीप टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा। बालोतरा में खेल खेल में मतदान का महत्व बताया जा रहा है, इसके लिए रोचक सांप सीढ़ी पोस्टर तैयार किया गया है। उधर कोटपुतली के गंगा सागर तालाब पर भी मतदाता जागरूकता के लिए दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में किसी भी जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन और कक्षा कक्षों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विद्यालय भवनों की सुरक्षा को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संस्थान भवनों की सुरक्षा की सतत निगरानी और नियमित परीक्षण करने को कहा। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में पीने के साफ पानी की उपलब्धता पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि प्रदेश के 65,000 से ज्यादा स्कूलों का तकनीकी सर्वेक्षण करवाया गया है। इनमें 3,000 से ज्यादा जर्जर भवन और 83,000 से अधिक जर्जर कक्षा कक्ष चिन्हित किए गए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनकी उपयोग पर रोक लगाई गई है। साथ ही प्रभावित विद्यालयों के संचालन के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है। श्री यादव ने बताया कि आईआईटी जोधपुर और जयपुर के एमएनआईटी के विशेषज्ञों की टीम द्वारा सरकारी स्कूल भवनों की स्वतंत्र तकनीकी सुरक्षा जाँच की जा रही है। मलेशिया में संपन्न लेक्रूज चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। कुआलालंपुर में भारत ने शुरुआती मुकाबले में मेजबान मलेशिया को हराया। इसके बाद फिलीपींस को भी मात दी। कांस्य पदक के लिए भारतीय टीम का सामना सिंगापुर से हुआ। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम क्षणों में सिंगापुर को 10-9 से पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा जमा। भारतीय टीम में कप्तान डाली गमेती सहित उदयपुर और जनजातीय क्षेत्र की बेटियों का अहम योगदान रहा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तिरंगे की शान बढ़ाने वाली भारतीय महिला लेक्रोस टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद राजस्थान की बेटियों ने उम्दा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस उपलब्धि के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और जज्बे से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने सुरक्षित भंडार से देश के प्रमुख शहरों के बाजारों में प्याज भेजना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए प्याज की आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ियों के अलावा सड़क मार्ग से भी लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज बाजारों में भेजा जा रहा है। साथ ही सरकार ने यह स्पष्ट किया कि बफर स्टॉक से प्याज बाजार में आने के बाद इसकी उपलब्धता बढ़ी है और कीमतों में कमी आ रही है। आने वाले दिनों में प्याज के दाम में और गिरावट आएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ शिखर सम्मेलन में संबोधन, आतंकवाद के इकोसिस्टम और फंडिंग को ध्वस्त करने का आह्वान। जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में आज से 2 दिन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। प्रदेश में किसी भी जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन और कक्षाओं का उपयोग नहीं करने के निर्देश। और मलेशिया में संपन्न लेक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक। टीम में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्र की 9 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।